राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध भाद्रपद कृष्ण अमावस्या सम्मत 2050 तदनुसार दिनांक 17 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। शरीर वाणी मन इनको शुद्ध करने से अंतर्गण ये मन बुद्धि शुद्ध होने से परमात्मा की तरफ विशेष रुचि होती है। तो अशुद्धि ना करें। खास एक बात है विशेष ध्यान देने की, शुद्धि करने की अपेक्षा अशुद्ध न होने देना बढ़िया चीज है। ये दो चीजें, तो एक तो शुद्धि करना और अशुद्ध न होने देना, ये दो में अशुद्धि न होने देना अच्छा है। मैंने साधुओं की कुछ ऐसे बातें देखी है, वे कपड़े के साबुन नहीं लगाते परंतु हर समय ख्याल रहते हैं कपड़ा खराब नहीं करते, रोजाना धोते जो साफ धो लेते हैं तो साबुन की जरूरत नहीं रहती। अरे जगह बैठे हैं तो मैली जगह न बैठे, जहां हो सके शुद्ध करके बैठे। हर एक काम करते हुए ख्याल रखें, एक ख्याल की जरूरत है। जैसे बाहर से आए तो बिछोने पर जावे तो वहां एक वो रहता पैर पूछने का डोरमेंट, उस पर साफ करके जाना चाहिए, नहीं तो बारी बोरी बिछी रहे उस पर साफ करके भीतर जाना चाहिए। मैंने कई बार कई भाइयों की ऐसी बातें देखी है, कादे में और बर्फ है सीधे सीधे चले जाते हैं। तो अशुद्ध न करना इसकी ख्याल विशेष रखे। ऐसे ही अंतःकरण को शुद्ध करने की चेष्टा है, बहुत बढ़िया है, परंतु अशुद्ध न होने देना ये अच्छा है। तो अशुद्ध न होने में क्या करें मैं, तो उसमें कई बातें हैं। आज के सज्जन ने लिखा है, वे बातें सुनाता हूं जो अशुद्धि से बचने के लिए है। वे सज्जन कहते हैं, हमने कई सज्जनों से सुना है और कई किताबों में अखबारों में पढ़ा है कि नहाने के सभी सुगंधित साबुनों में चर्बी मिली हुई होती है। यदि यह गलत है तो कथा और मंगलवार बृहस्पतिवार को साबुन लगाना वर्जित है। साबुन लगाना किसी में वर्जित है तो हमें याद नहीं है, पर साबुन की जरूरत न पड़ देना ये बड़ी बढ़िया चीज है। साबुन की जरूरत ही न पड़े, कपड़ा धोवे तो साफ धोवे सदा, तो वे प्राय साबुन की जरूरत नहीं रहती है। अब इसमें साबुन लगाने की बात है तो उसे चर्बी पड़ती है, ये बात मैंने सुनी है, सही बात है। चर्बी में कुछ चिकनाश होता है, वो कुछ शुद्धता लाता है, तो शुद्धता तो नहीं लाता है, सफाई लाता है। एक सफाई होती है, एक शुद्धि होती है। सफाई जैसे हड्डी है उसको भी तेजाब से धोकर साफ कर दे तो सफाई तो हो जाती है, मन शुद्धि नहीं होती। साबुन का शुद्ध हड्डी का शुद्ध कैसे क्या होगा? तो आज सफाई पर तो ख्याल है, शुद्धि पर ख्याल नहीं है। भगवान ने भगवद गीता लिखी, जो व्यास जी ने लिखी तो किस ढंग से लिखी है भगवान ही जाने। बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात। आज विसंपत्ति का लेख शुरू करते ही प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना विद्वास हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आज भी संपत्ति वाले जानते ही नहीं। तो यहां से शुरू होती है आज भी संपत्ति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यहां से। न सोचा फिर क्या शुद्धि नहीं रहती भाई, आप फिर शुद्धि नहीं जो। और आचार विचार अपने साथ में, आचार्य सदाचार होता है, तो एक सदाचार होता है, एक शुद्धाचार होता है, शौचाचार। तो सोच भी नहीं है, आचरण भी, माता पिता भाई बंधुओं के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये है सदाचार है। और जो मन शरीर वाणी को शुद्ध करना चाहिए ये शौचाचार है। तो न शौचम न विचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते, उनमें सत्य नहीं है, झूठ कपट करते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आरंभ होती है आखिरी संपत्ति यहाँ से। तो साबुनों में चर्बी लगती है, कपड़े धोने से साबुनों में चावल चर्बी लगती है। इसलिए विचार हुआ तो सेठ जी ने और सज्जनों ने वहाँ गोविंद भवन कलकत्ता में साबुन बनाना शुरू किया है। तो अभी चलता ही होगा, वो साबुन है उसमें चर्बी नहीं होती है। साबुन बनाना शुरू किया और क्या करें, लोगों में तो परवाह नहीं है इसकी, तो अपने गोविंद भवन शुरू किया। नहाने का साबुन, साबुन भी धोने का भी साबुन ऐसा बनता है, सुगंध भी बनता है, पर चर्बी नहीं लगती। इसलिए ही साबुन का वो खोला कारखाना, ये कोई पैसा कमाने के लिए नहीं। जैसे गीता प्रेस है ये बहुत बड़ा दिखता है, परंतु ये गोविंद भवन की शाखा है, गोविंद भवन ट्रस्ट है उसकी शाखा है गीता प्रेस। तो मूल गोविंद भवन है गीता इनमें कलकत्ता में, तो उसमें ऐसी बात। और चाहिए तो रोटी आप लोगों से ले लेता हूँ, वहां से ले लेता हूँ। सफाई देने का मन करता नहीं, आएगी मन में जहां तक बने, मैं किराया भी गोविंद भवन ने गीता प्रेस नहीं लेता हूँ, जहां तक बने दूसरा मिल जाए तो उसे नहीं लेता हूँ। मैं रेल किराया भी लेता नहीं हूँ, भिक्षा लेता हूँ, सबसे लेता हूँ भिक्षा। तो अब ऐसी बातें मैं कहूँ तो लोग समझे कि आप व्यापार करेगा अपने बेचेगा, ऐसी बातें मैंने सुनी है। तो वहां से आप साबुन मंगा सकते हो, तो साबुन में प्राय चर्बी पड़ती है, अशुद्धि चीजें पड़ती है, ये बात मैंने सुनी है, सच्ची है। आज को लोग सुबह उठते ही कोलगेट से साबुन करते हैं। अखबारों में पढ़ा है कि कोलगेट मरे हुए पशुओं की हड्डियों से बनता है, मरे हुए हड्डियों की ले तो खराबी है, मुंह में ले लिया, छूने पर भी स्नान करना चाहिए, अगर मुंह में वो ले लिया तो बड़ा खराब है। तो भाई हम क्या करें, कैसे दांतुन करें, तो आपको दांतुन बताऊं मैं। संधा नमक पीस कर करो और हल्दी पीस कर रख लो, और उसमें सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल मिलाकर करो, दांतों की बहुत बीमारियां दूर हो जाती है, मुख साफ हो जाता है, मुख स्वादिष्ट हो जाता है। अपने गर्म बनाओ सीधी सीधी चीज, नमक हल्दी, नमक संधा नमक हल्दी और सरसों का तेल, यूं करो। फिर पूछ लेना अच्छी तरह से, नहीं तो यहाँ भी जरा हड्डी जल्दी ना तजे, खतरस तजे ना आम असली, तो अवगुण तजे गुण को तजे गुलाम, तो हल्दी जा लग जाती है, तो उसको साफ पूछ लो। बहुत बढ़िया था, तूने मेरे किया हुआ भी है, वह कहते भी है। क्रीम जो औरतें श्रृंगार में अपने मुंह पर लगाती है, और कई भाई लोग फिर दाढ़ी बनाने के बाद अपने हाथों पर लगाते हैं वह क्रीम स्लेंडलोरिस नामक बंदर की आंखों और दिल से घिसकर बनाते हैं। बंदरों की आंखों काट करके घिस कर बस बनाते हैं वो। यहाँ से अनगिनती के बंदर विलायत भेजे जाते हैं। स्टेशनों पर बक्सा बनाया हुआ जालधार, उसमें मैंने देखे हैं बंदर सबके सब विदेश जा रहे हैं। बंदरों को बहुतों को भेज दिया है, बंदरों को, गायों को और खालों को, जानवरों को विदेश में देने में हिंदुस्तान सबसे नामी है। इतनी खाल जीवरी हिंदुस्तान से जितनी विदेशों में जाती है उस और देश में किसी से नहीं जाती। जो धर्म प्राण कहा जाता है वो हिंसा प्रधान हो गया है। सांप को भी क्यों करके मैं कीड़ी दे करके फिर जीते जीते की चमड़ी उतारते हैं, खरगोश की उतारते हैं, श्यालों की उतारते हैं, कई जानवरों की जिनका नाम ही हमें ना है। मैं पुस्तक देखी है उसमें चित्र बना हुआ है, उनकी सब खालें उतारते हैं, विदेश में भेजते हैं, मांस लेते हैं भेजते हैं। और गायों का तो हजारों का ही कत्ल किया जाता है, विदेश में भेजते हैं। हिंदुस्तान नष्ट हो रहा है तो ये भेजते हैं। उन चीजों से बढ़ते हैं तो बंदरों से कई दवाइयां बनती है, वे दवाइयों में काम आती है। तो कि बंदरों के हड्डियों से घिस करके दिल और आंखों से दिल बताने जाते हैं, महान अशुद्ध है। तो इसमें लगाना हो तो गऊ का घी बहुत बढ़िया है। बहु गऊ का घी लगाओ जो शुद्धि भी होगी, सुगंधि भी होगी। चातुर्मास के श्रावण भादवे का गेहूं घी ज्यादा दिन नहीं टिकता ये, परंतु हरा घास चरने वाले गायों का घी पीला पीला होता है, बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है। ब्याह में जना बनी बनने वालों को पीठी लगाते, पीठी तो आटा होता है, हल्दी होती है, घी होता है। तो ऐसा गाय का घी जिससे बहुत सफाई होती है चमड़े की, ये पहले से आया है तो लगाना हो तो ये लगाओ, अपनी शुद्ध चीज है। गायों का घी में बहुत शुद्धि है, गाय के गोबर में शुद्धि है, गाय के गोमूत्र में महान शुद्धि है। बड़ी बड़ी दवाइयां बनती है, बड़े बड़े जहर है, ये धातु चीज है, इनको शुद्ध करते हैं। तो तेले तकरे गवाल मूत्र तेल में बुझाते हैं, सांस में बुझाते हैं, और गायों के छंगास में, गायों के मूत्र में उनको भिजोते हैं, तब बड़ी बड़ी दवाइयां बनती है बढ़िया। और गाय के गोबर से दवाइयां बहुत बनती है, सब तरह के रोग दूर होते से बनता है। और छोटी बछड़ी हो दूध सूंघने वाली, उस बछड़ी का गोंत सुबह लिया जाए तो उससे पेट के रोग मिटते हैं, हृदय के रोग मिटते हैं। हमारे महाराज ये आपने सुना होगा अखबारों में, वृद्ध संत वामदेव जी महाराज, उनके दमे की बीमारी रही, कई दवाइयां कई नहीं मिटी, उनसे मिटी तो फिर कहा गाय का गोमूत्र लेने से मेरे दमे की बीमारी मिट गई। तो दमे की, पेट की, हृदय की बीमारियां मिटती है। बूढ़ी बड़ी गाय का गोमूत्र तेज बहुत होता है, तेजाब होता है। उसने एक सज्जन ने वो ज्यादा ले लिया तो आंतें खराब हो गई, आंतों में घाव पड़ गया, इतना तेज होता है। तो ये याद रखना, बूढ़ी बड़ी गाय का नहीं ले तो उसे पानी भी और बहुत थोड़ा पानी में मिला लेना चाहिए। छोटी बछड़ी का होता वो तेज नहीं होता, वो रोग मिटाने वाला होता है। तो वो बहुत अच्छा है, पवित्र है, गंगा जी का निवास है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। इस वास्ते गंगा जल के समान है वो गोमूत्र। इस वास्ते सज्जनों के कई ऐसे सज्जन है देखा है, सुना है गाय गोमूत्र करती है तो थोड़ा लेकर के जाओ, अरे अपना मुंह में संथा दे देते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी शुद्धि है, और भीतर में भी पवित्रता करती है, बाहर भी पवित्रता करती है। गोबर की खाद होती है वो बढ़िया होती है, 100-100 वर्षों की झाड़ियां है उड्यानी में उस खेड़े में बाजरी बोते हैं, खेत बोते हैं, कभी पुराना नहीं होता। गाय बैठती है, गोबर होता है, गोमूत्र होता है, उससे जमीन को पुष्टि मिलती है। जमीन से घास है तो गायों की पुष्टि, गायों के गोबर गोमूत्र से जमीन की पुष्टि। ऐसे खेती करने वाले करते हैं, रखते हैं, मैंने देखा है, सुना भी है। तो ऐसी शुद्धि आप बनाओ, कितनी बढ़िया रहे। दूसरा, आप अगर दातुन करना चाहो तो गाय का गोबर, वह जो बछड़िया होती है, गौवा भी होती है, जो उसका पोटा होता है काठा काठा, मेघड़िया बड़े जो काठा काठा पोटा होता है, वो सूख जाए, अथवा जंगल में कोई पुराना छाना मिल जाए तो उनको बाल करके उनको खीरा हो जाए, धुआं न रहे, तो पानी में डाल दो, वो राख फिर उससे दातन करो, बहुत बढ़िया होता है, एकदम सफाई हो जाती है दांतों की। और आपके करना हो तो अपने जो बाड़ू रेत है, उस बाड़ू रेत की मोटी मोटी नहीं, महीन महीन रेत ले करके और मुंह में भर लो, वो मुंह में सब भर जाए, वो पानी में तर हो जाए भीतर से, तब थूक दो और उससे साँचो करो, तो मुख बड़ा ही सुंदर होता है, जीभ और तालू और दांत सब शुद्ध हो जाते हैं अपनी ये बाड़ू से। और पेट के रोग भी थोड़ी सी कितनी बाड़ू रोजाना ले तो पेट के रोग दूर हो जाते हैं। बाड़ू में बड़ी शुद्धि चीज है, इसमें हर एक जगह मिट्टी वाली चीजों में गोबर और पड़ जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। हमारे यहाँ मैंने देखा है, मैंने बातों की निगाह रखी है, ज्यादा खोज नहीं करी परंतु ख्याल रखा है, तो यहाँ गोबर है, कोई टट्टी फिर भी आता है तो बाड़ू पर फिरते होते 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 सफा बाड़ू बन जाता है, पता ही नहीं रहता गोबर था कि मैला था, यहाँ पर पता ही नहीं था। ये इतनी शुद्धि करने वाली ये बाड़ू है, तो अपने बाड़ू का दांतन करो, कितना बढ़िया काम है, शुद्ध है अपनी टीमों की ऐसी महिदेत करके, तो उनसे जब जब साफ हो जाए, दाद की बीमारी हो जाए काछों में, और तो दाद की बीमारी पर बाड़ू ला करके और रोजीना रगड़ रगड़ के धो, अच्छी तरह से दाद मिट जाती है, उठते ही बासी थूक हुए वो उस पर घसकर लगाया जाए, जहाँ जहाँ दाद है वहाँ पर थूक लगाया जाए, बासी पहला ही पहला थूक जो उठते हो तब, तो उसे दाद मिट जाती है। हमारे देखा हुआ है ये किए हुए काम में ली हुई दवाई है, तो ऐसे मिटते हैं। इस तरह से आप क्यों उसको जो आंखों में और पद बेचारे गंदरों से मार कर दिया जाए। लिपस्टिक जो औरतें अपने लटाट में तिलक व होठों पर लगाती है, वह लिपस्टिक कोई रंग नहीं है, किसी जीव का रक्त बनता है, उस खून से बनाते हैं, तो वो क्यों लगाओ। अपना कुमकुम लगाओ, जो सुहाग का खास चिन्ह है। हमारी तो एक कहावत है कि हम दहेज वहेज कुछ नहीं लेते, हम तो कुमकुम कन्या, कुमकुम कन्या, जो कुमकुम इतनी बड़ी चीज है, कन्या के साथ कहते हैं कुमकुम कन्या, तो कुमकुम लगा दो, तो ब्याह का चिन्ह है, सुहाग का चिन्ह है। ये जो मांग भरती है ना बहनों माताएं, ये मांग कहलाती है, जो सगाई होती है तो सगाई में मांग होती है, ये किसकी मांग है, तो सगाई होने पर कहते हैं उनकी मांग है, तो माने इनकी सगाई होगी, मांग है तो उनकी मांग होती है, विवाह होने पर यहाँ पर डालते हैं। भगवान श्री राम जब विवाह कर देते हैं तो वो मांग स्वयं भगवान सीता जी की मांग भरते हैं, ये पति के दी हुई मांग होती है, ये मांग यहाँ का, तो यहाँ भरती है, तो यहाँ कुमकुम लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए जो शुद्ध हो, तो वो लगाने से वो भरो, तो कुमकुम बनाने क्या है, ज्वार का आटा पीस करके और उसमें नींबू निचोड़ दो, इसी तरह से लाल हो जाएगा, कुमकुम बन जाएगा, ये सीधी बने शुद्ध चीज है, तो शुद्ध चीजों की लेकर करो, अशुद्ध चीजों में क्यों जाओ, पैसा लगे मुफ्त में, पैसा में खर्च हो, अशुद्धि रहे, पैसा दे करके नरकों में क्यों जाओ भाई, सीधी शादी अपने घर में चीज बनाए लो। तो इसी से अपने तिलकार लगाओ और मुंह की सफाई मुंह की सफाई होती है मक्खन से, मक्खन से चमड़ा बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल होता है। कभी बच्चे छोटे छोटे होते हैं बच्चे, तो बिलोने करने वाली माता है उनके पास बैठ जाते हैं, वो बिलोने का छाटा उछलता है, उसे देखो तो मुंह सुंदर हो जाता है बालक का, बैठ जाते हैं। माया माता है, मक्खन देती है, उस मक्खन छोटी अवस्था में मक्खन ताजा खिलाने से वो बहुत वर्षों तक बूढ़े अवस्था में भी ठीक रहता है। मेरे को भी मिला है ऐसा मक्खन। अब आज क्या करते हैं, जूतों पर लगाते हैं वो जो काला काला, अब छोरा बैठे तो वो बुरश से फूटता है, वो मुंडा हो जाता है छोरों का काला, फिर वो सुंदरता कैसे आवे या वो काला मुंडा करने पहले। तो इस तरह से ना बोले कृपा करो, कृपानाथ माताओं से कहना है कि आप ही बच्चों को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। गाय का मक्खन होता है सफाई लाता है और शरीर पर सुंदरता लाता है। अब वो सुंदरता के लिए आज इसमें तो नहीं लिखा है, परंतु विष्ठा होती है मनुष्यों का मैला, उस मैले को सह करके बिलो करके उससे निकाली जाती है वह चिकनास, वो चिकनास लगाने से बहुत सुंदर चमड़ा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। हमारे सज्जन थे तो वो सदैव गणेश क्रिया करते, गणेश क्रिया कहते हैं सोच जाने के बाद बीच में यह अंगुली डाल करके तटी स्थान में और भीतर से जो खोद करके धो लेते फेर करके, तो वहां मल नहीं रहने देते। वो मल नहीं रहने से उनके नख और एक अंगुली ये इतनी सफाईदार सुंदर होगी मैंने देखी है। तो मैले से सुंदरता आती है। पर वो तो करते हैं बाएं हाथ से जब शौच क्रिया करते हैं तब, तो उसमें नख में और आंगली में सुंदरता आती है। तो मैला है इसका वो चिकनास लेकर के साबुन बनाते हैं बड़ा सुंदर सफाईदार रहने के लिए। तो मैला लगाओ कुल भाई, सुंदरता से स्नान करो, स्नान करके चमड़ी चमड़ी पर चर्बी लेप कर लिया अथवा वो भिष्टारा जो चिकनास वो लेप कर लिया, तो शुद्ध होएगा, अशुद्ध सफाई तो हो जाएगी, अशुद्ध हो गए महान अपवित्र हो गए। इसलिए कहने अगर आपने अच्छी तरह से करो तो गौओं के मक्खन में वो शक्ति है। ऐसी और भी कई चीजें हो सकती है, मैं तो साधारण सुनिए साधारण बात कहता हूँ, और खोज करो तो बहुत बढ़िया काम मिल सकता है। साबुन लगाने की, साबुन की जगह अब आजकल तो है नहीं, खेती करी जाए उसमें तिल होते हैं, उन तिलों को सालर, तिलों की सालर कहते हैं, जिसमें तिल निकाल दिया जाए वो सूंघनी होती है और उसके डंठल होते हैं, उसको तिलों का सालर कहते हैं, सालर। तो वे जला करके वो राख डाल करके और फिर नित्र जाए पानो साफ कपड़ा एकदम बहुत बहुत साफ होता है, उस राख से साफ हो जाए। गेहूं जो तिल हो जाते हैं तो तिलों को काटते हैं, जब वे कपड़ा पहरे हुए लेते हैं तो वो कपड़ा धो, वो तिलों का चिकनास लगने से एकदम कपड़ा साफ हो जाता है। तिलों में वो शक्ति है, तो तिल की राख बना करके पानी में घोल कर वैसे ले। सब्जी होती है, सब्जी खार जो पापड़ में बनती है, पापड़ बनते हैं जिनका वो जोत बनाते हैं, तो वो सब्जी का एक इतना ढेला ले करके अग्नि में तपा लो, अग्नि में तपा करके वो है अच्छा अंगार का अंगारी पानी में डाल दो, फिर पानी धो लो, मैं कपड़ा धो दे साफ हो जाएगा, पानी भी साफ होगा, कपड़ा भी साफ हो जाएगा। ऐसे बहुत सी चीजें है जो अपने कपड़ा साफ करने के, शरीर साफ करने के लिए। गंगा जी वृंदावन में मैंने देखा है, जमुना जी का, और नवद्वीप में गंगा जी का किनारा मैंने देखा है। गंगा जी जब बाढ़ आ जाती है उसमें मिट्टी आती है और फिर वो नीचे उतरती है, तो धीरे धीरे उतरने से वहां की मिट्टी उसमें जम जाती है, वो पापड़ी बन जाती है। ऐसी ऐसी मैंने देखा है, काम में भी थोड़ा थोड़ा दिया है। तो तो ऐसी पापड़ी बन जाती वो लाओ शरीर के लगाओ तो शरीर में जो साबुन लगाओ जैसे वो साफ होता है। एक गंगा जी की गंगा जी की मिट्टी जमुना जी की महान पवित्र उनसे बहुत पवित्रता भी होगी सफाई भी होगी। मैंने ऐसे साधुओं को भी देखा है जो मिट्टी लगा करे मिट्टी लाकर साफ उसके रगड़ करके उसे स्नान कर लेते हैं तो साबुन से बढ़िया होती है कम नहीं होती वो यार शुद्धि आती है निर्मलता हो जाती है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं आप लगाओ तो सिंदूर लगाओ कुमकुम लगाओ माता बहनों के लिए जो मांगलिक है वे मांगलिक कहदारी है तो वो चीज सदा रखो। सुहागन बहनों को तो अपनी मांग भरनी चाहिए रोजिना इसको मांग भरना कहते हैं इसमें सिंदूर लगावे कुमकुम लगावे तो मांग भरी है इस अवश्य लगाओ। जो जीव जंतु की खून है वो क्यों लगाओ यदि ये सभी बातें सच्ची है अपवित्र है और इसमें लगाना पाप है तो आप हम सभी भाई बहनों को यही मार्गदर्शन कर देने के बगैर नहीं। तो इस तरह से आप शुद्धि रखो निर्मल रखो। पांग राग होता है बहुत ही खराब है और उसमें नशीली चीजें होती है खाना शुरू कर दे तो वह छूटेगा नहीं जैसे अफीम चीज से अफीम नहीं छूटता ऐसे उसमें मादक चीजें रहती है। आज दुकानदार पैसा ज्यादा पैदा हो इस दृष्टि पर ही काम करते हैं व्यापार करते हैं। यहाँ भी कई तरह दुकानें लगी हुई है प्राय करके पैसा अधिक मिल जाए पैसा अधिक मिल जाए। जैसे गीता प्रेस है अपने जो चीज है उनकी तरफ तो चीज बढ़िया लोगों को मिल जाए चीज बढ़िया मिल जाए ये धुन रहता है और दूसरे दुकानदारों को पैसा ज्यादा मिल जाए पैसा ज्यादा मिल जाए ये धुन रहती है। तो दोनों धुनों से बड़ा व्यापार में अंतर आता है बहुत विचित्रता है। गीता प्रेस के कपड़े की दुकान है जिसमें महाराज खूब कपड़ा बिकता है और उसमें देता नवा सब गीता प्रेस को देते हैं उस धरने के कारण से गीता प्रेस की पुस्तकें सस्ती बिकती है। नहीं तो आप गीता प्रेस की पुस्तक जैसे साधक संजीवनी बहुत बड़ा पुस्तक है वो लेकर आप देखो तो कागज के 400-500 लग जाए कागज कोरा कागज उतने दमा में नहीं मिलेगा आप लेकर के देख लो उतना छपा हुआ जल्द बंदी हुई देते हैं। तो कारण क्या भी लोगों के घरों में एक चीज पहुंचे किसी तरह से जो लोग शुद्ध हो जाए तो ये शुद्ध की दृष्टि से कपड़ा भी बिना चर्बी का लोगों को मिले इस विचार कर कपड़े का बाजार किया है। चूड़ियां भी लाख की ना हो कांच की हो तो वो अच्छी होती है लाख की होती है। पहले पुराने जमाने में चूड़ियां शंख की बनती थी इस वास्ते उसका नाम शंखा लिखा है। महाराज दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया एक कन्या को तो कन्या चावल कूटती थी धान निकाल चावल फिर बनाना है तो उनके हाथ में चूड़ियां थी शंखा शब्दम चक्रु वो शंख शब्द कर दे शंखा नाम चूड़ियां शंख की बनती है। आज बंगाल में शंख से बनाते हैं चूड़ियां मैंने देखा है वो बैठ जाता है उस लगा देते हैं और ऐसा होता है यूं वो यूं करते हैं यूं उनको कीर कीर कर देते हैं चूड़ी बनती है और लाख से चूड़ी बनती है तो शंख वो हड्डी है शंख है वो भी और चूड़ी बनती है लाख की लाख है उनमें लाखों ही जीव होते हैं लाख जहाँ वृक्षों में लग जाती है तो वृक्षों पर लगा देते हैं वो वृक्षों की एक कोड है और उसमें जंतु होते हैं। यहाँ चबूतरे पर रख दो तो चबूतरा ऊपर भीतर लाल हो जाए इतने इतने जीव उसमें चढ़ जाते हैं उन जीवों को इकट्ठा करके और एक थैली बनाते हैं जैसे कोई निवार हो मोटी उसकी लंबी थैली उस थैली में जमा करते हैं उसको फिर तपाते हैं जोर से तपाने से जीव तो चट 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 कर मर जाते हैं और उसमें से पीप निकलता है उसका तो चपड़ा बनता है चपड़ा और उसे भीतर रहती उधिक बनती है लाख तो जीवों का कोरा कचरा ही कचरा लाख है वो चूड़ियां बनाती है। तो आजकल तो वो बहुत कम मिलती है पर वो होती है लाख की अशुद्ध चीज होती है वह पवित्र चीज नहीं है ऐसे है। और नारियल की चूड़ी बनती थी वो तो बहुत कम देखने वाली पहले मैंने देखा है हाथों की यहाँ की बाजू बंद हुई यहाँ भी खांच खांचा कहते खांच यहाँ के चूड़ियों खांच कहते हैं या वो चूड़ी कहते हैं तो वे मैंने नारियल की बनी हुई देखी है आजकल तो देखने में ही नहीं आती है आजकल तो अशुद्ध अशुद्ध चीजें लाते हैं सभी इस तरह से शुद्ध चीजों का व्यापार करो, शुद्ध चीजें श्रृंगार में लाओ, बहनों माताओं की चाह के निर्मल चीजें आप श्रृंगार में लाओ। धातु नारी करना तो शुद्ध चीजों से करो, अशुद्ध चीजों में क्यों जाओ, नरकों में जाओ सीधे मुफ्त में। उसे कोई रोटी मिलती नहीं, कोई पेट भरता नहीं, कोई पैसा गिना होता नहीं, सीधा नरकों में जाने का रास्ता है। ऐसा क्यों करो, बचो भाई। मैंने तो लिखी पुस्तक लिखी है, महापाप से बचो, महान हत्या से बचो, मातृशक्ति की सेवा करो। कन्या होती है वो मातृशक्ति है, वो माँ बनेगी, संतान वृद्धि होती है माताओं से, वो माता बनती है। जो गर्भ में भी नष्ट कर देते हैं तो छोड़ा रह जाएगा कुमारा, आपका वंश होगा नष्ट। इधर तो कर देते हो रूप लगा दिया, कहते ऑपरेशन करा दिया, आपने नशबंदी कर ली, इसलिए पैदा नहीं होने देते, और पैदा होने में छोरियों को गर्भ से गिरा देते हैं, आपका वंश होगा नष्ट। इधर तो कर देते हो रूप लगा दिया, कहते ऑपरेशन करा दिया, आपने नशबंदी कर ली, इसलिए पैदा नहीं होने देते, और पैदा होने में छोरियों को गर्भ से गिरा देते हैं, तो वे गिरा बने रहते, छोरियां हो जाएगी कमती, पुरुष हो जाएंगे अधिक, विवाह होगा नहीं, तो विवाह न होने से कुंवारी मर जाएंगे, तो वंश नष्ट हो जाएगा। तो वंश नष्ट करने की यह तरकीब राज की सुनी है मैंने, मैंने यहाँ तक सुनी है, पूरा पता है नहीं, लिखी भी नहीं लिखी है, सुनी है कि राज का विचार है कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम का कोई नहीं रहेगा और गायें कोई नहीं रहेगी। हिंदू और गायों का तो नाश करना ही है, जिस किसी रीति से इसका वंश न चले, ऐसा किया है। जयपुर में लोगों ने परीक्षा करी, गणना करी, उस गणना की बात मैंने सुनी है कि उसमें छोरा और छोरी उनकी संख्या बताई, जिसमें छोरी 2 और 3 छोरा ऐसा है, 3 छोरा है 2 छोरी है। अब ब्याह किसका होगा, 2 का होगा, 1 का ब्याह होगा, नहीं तो यूं वर्ष नष्ट हो जाएगा। कहते इसी बात जब तक नहीं तो 25 वर्ष में 4 छोरी और 2 छोरा होगा, इस हिसाब से ऐसा हो जाएगा। फिर छोरे कुंवारे रहेंगे और छोरियों में 2 के सिवाय ज्यादा पैदा होना नहीं, और ज्यादा पैदा नहीं होगा तो लोग मर जाएंगे, तो खत्म हो जाएंगे। आपने जन्म पर तो प्रतिबंध लगा दिया, मौत पर प्रतिबंध लगाया है क्या? 2 छोरा है उसमें कोई मर जाएगा, 1 मेरा, दोनों मर जाएगा तो जयराम जी की क्या अकल आई है भगवान जाने। आप लोग ही उसमें शरीक हो रहे हो, हम तो यात्रा में गए थे दक्षिणी तरफ का, महाराज छोरे को पागल कुत्ता खा गया, 2 ही थे, 1 मर गया, 1 है। अब आप आशीर्वाद दो जो जी जाए। अरे तुम्हारे घर में खान है ट्रावरी, वो तो आप करते नहीं, मेरे से आशीर्वाद मांगते, ऐसा मेरे में है नहीं, वो शक्ति दे दूं मैं, मर जाएंगे और फिर थोड़े होंगे, आप होंगे थोड़े, तो फौज पलटन में पहले से ही रखा है कि हिंदुओं की फौज रहती है, मुसलमान नहीं, क्योंकि रक्षा करेगा तो हिंदू के हृदय में दया होती है, मारते नहीं। अरे मुसलमान तो मारने के लिए ही है, क्यों? कुरान शरीफ में लिखा है जो मुसलमान नहीं हो उसको खत्म कर दो, जो मूर्ति की पूजा कर दो खत्म कर दो, ऐसे कुरान में उनकी शिक्षा है, मैंने उसका अनुवाद पढ़ा है। तो वो करते हैं, अब आप 2 ही होंगे तो 2 का 1 रहेगा, तो 2 रहेगा तो फौज में कौन भर्ती होगा? घर में काम करने में रहेंगे, फौज में भर्ती होंगे जिनके 60-60 लड़का लड़की एक एक के, ऐसे मुसलमानों की बातें मैंने सुनी है। वे ज्यादा होंगे ईसाइयों में, ये ज्यादा वही फौज में भर्ती होंगे, जो कहीं दंगा हो गया तो फौज ही जाएंगे वहां पर, उस दंगे में क्या करेंगे आप सोच लो, क्या दशा आपकी होगी। आप संतान निरोध करते ऐसा करते हो, कई लोग कहते हैं स्वामी जी अश्लील बातें करते हैं, अब ये अश्लील है क्या है, आप से लोग शुद्ध है अशुद्ध है, आप सोचो आखिर क्या दशा होगी, आप सोचते नहीं हो। मैं तो बहुत वर्षों से कह रहा हूँ, 2025 से तो मेरे को याद है, 2024-25 से मैं कहता चला आ रहा हूँ। मेरे को मेरे मित्रों ने कहा कि राज पकड़ देगा, वो कैद कर देगा, तो भाई डर तो लगता ही है, कैद कोई बढ़िया तो लगती नहीं, हमारे को शौक तो नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा विचार कर देंगे रह जाते चले जाएंगे, कैद में क्या है, लोगों को चेता दें। पर हमारे सुनने वाली बहनों भी नहीं मानती, पुरुष भी नहीं मानते, मैं चर्चा कहता हूँ उसी का चर्चा हाथ मत करोगे, ऐसी भी शिक्षा देते, क्या करें, कैसे कहें, क्या कहें, सुनते ही नहीं आप, तो इस तरह की अशुद्धि है, महान पाप की बात है, वंश का नाश करने वाली बात है। ऐसी बातों का आप काम में मत लो। पांच राग होता है उसमें ऐसी दिल होती है, खाने लग जाए तो फिर छूटेगा नहीं, क्यों? जैसे चाय का नशा है, अफीम का नशा है, भांग का नशा है, ऐसा नशा है तो वो छोड़ सकेगा नहीं, व्यसन हो जाएगा तो आपका पतन हो जाएगा। तो क्यों करो ऐसा? पान लगाओ, सो का पान पान बढ़िया करना, थोड़े मुलेठी का चूर्ण दे दो पान में, जर्दा देते हैं, मखर नशीली चीजें देते हैं, बहुत खराब चीज है। सुपारी है, सूना और कत्था मिला, ये सफेद सूना होता है और कत्था होता भूरा भूरा, दोनों मिलाकर लाल हो जाता है, ऐसे बनता है। सफेद में नींबू निचोल तो लाल हो जाएगा। आपके अंग पाठ लगाने में कुछ हल्दी का कपड़ा हो जाए, हल्दी का साग लग जाए तो साबुन लगाओ लाल हो जाएगा। तो सफेद और ये खटाई मिलने से लाल भी पैदा होती है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखें, अपने को पवित्र बनाए, निर्मल बनाए। बहुत ऐसी है जो ये मेहंदी लगाते हैं, जिस जगह भी वो लगाते हैं ऊपर नख का नख पालिश, वो नख पालिश होता है मरे हुए ऊंट के चमड़े से बनता है शरीश, वो शरीश में रंग मिला लगाते हैं तो वो चमड़ा उतरता नहीं है तो उसे रंग लगते हैं। तो मेहंदी लगाते हुए आए हो, अलता लगाते हुए आए हो, लोग मारवाड़े में कहते थे कूट थे ना अल्तो करते हैं, अल्तो तो वो अल्तो क्या था, अलक, संस्कृत में उसका अलक नाम है, अलता होता है। वो लगाते थे, कुमकुम लगाते थे, मेहंदी लगाते थे, हाथों और मेहंदी नखों में मेहंदी लगाते थे, मेहंदी अपना सीधा सारा घास है वो लगा ले तो उनसे लाल हो जाता है। रात भर रखो, सुबह देखो तो वो उतार दो, रंग हो जाता है नखों पर। तो पवित्र चीज है वो लगाओ, वो क्यों लगाओ? मरे हुए चमड़े को गाड़ करके उसमें रंग लगाया हुआ महान अशुद्ध, उसी रसोई बनाओ, हम जाओ तो हमारे को वो रोटी दो, राम 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 मुर्दों की ऐसी, तो ऐसे अपना करो, कृपा सुन दो, कृपा लो, आप ख्याल रखो, हरी बस शुद्ध करो। बाजारों में बर्फ लाते हैं, बर्फ को पैर रखते हैं, जहाँ बर्फ का कारखाना बनाने का है, बड़ी बड़ी शिलाओं तेरे बर्फ में देखी, बड़ी बड़ी शिलाएं, उन शिलाओं के ऊपर मांस सुखाते हैं, जो मांस काट कर रखते हैं तो वह शिला पर रहने से वो मांस खराब नहीं होता, नहीं तो मांस तो गंदा बहुत जल्दी दुर्गंधी हो जाए, उसमें महान दुर्गंधी, सूखा मर जाए तो आपने देखा वो कितनी दुर्गंधी आती है, तो मांस दुर्गंधी आती है। उन शिलाओं पर रखते हैं मांस, यार वो बर्फ गमती है, आप लोग लेते हैं सभी, तो बर्फ हो तो आजकल तो वो रेफ्रिजरेटर रहना है सफेद होती है क्या नाम आता है, हाँ फ्रिज होती है, उसमें घरों तो घरों में जाने पड़ जाती है, तो अशुद्धि में क्यों जाओ बताओ? ऐसी पवित्र चीज रखो। आज पवित्र नाम तो रहा ही ना, न शोचम न अभ्याचारो न सत्यं तेषु विद्यते, साफ साफ भगवान के प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विद्वेषः, न शोचम न अभ्याचारो न सत्यं तेषु विद्यते, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुर अनस्वम परस्पर संभूतम, बस वो कायम है नहीं है, ये जगदाहुर अनिश्वर ईश्वर कोई है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। ऐसे अधर्म में आंखें बंद कर क्यों चलो भाई? आंखों को देखो जरा, भगवान ने कृपा करके बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उससे अशुद्ध चीजों से बचो, जो शुद्ध हो जाओ तो परमात्मा की तरफ रुचि होगी। अब अशुद्ध चीज में रुचि नहीं होती है, मैला अंतकरण होता तो मैली चीज पैदा होती है। जैसे जब सर्दी बढ़ जाती है तो प्यास लगती है, बुखार में प्यास लगती है, जो पिए जो फिर प्यास लगती है। ऐसे शीत ज्वर होता है तो कपड़ा ओढ़ते हैं फिर भी शीत ज्वर दूर नहीं होता है, तो इसमें शीत ज्वर के लिए कपड़ा इतना काम रहा नहीं है, गर्म करके जल, गर्म गर्म जल पियो, शांति में तेज ज्यादा दूर होता है। ऐसी कई बातें पड़ी हुई है। ये फोगड़ा जो काट काट करके आज नष्ट कर दिया है, इतनी अगोचर भूमि में फिरा हूँ, फोग एक देखने में नहीं आता, जो फोग फोग अपने थे वे नष्ट कर दिए, फूसिया काट काट करके बेच दिया, महंगी होगी लकड़ी ताकड़ी में तुल करके लकड़ियां बिके, आश्चर्य जैसी बात है, तो उसमें भी गड़बड़ दिया, फोग रहा ही नहीं है। तो मैंने तो भोग लगाया भी है अपने दौरे पर मैं रहता हूँ तो उनके पास आप जा देखो थोड़ा थोड़ा भोग लगाया है मैंने बीज मंगा करके भाई फिर भोग लगा दो ये अब वहाँ गोचर ये भूमि है जो क्या वन विभाग में धामन का घास लगाया है कि थोड़ा खिसके नहीं अरे धामन का घास इतना नहीं लगता उसे सेवन ज्यादा लगती है अरे फोग उसे भी ज्यादा लगता है इस जमीन में मानता है अब फोगों को कर क्या बात है ना तो जानकार से पूछते हैं ना सभी जानते हैं आप में तो अकल नहीं दूसरे की माने नहीं अब क्या करें तीजा उपाय नहीं तीजा कोई उपाय नहीं है अकल कहते हैं दिवाड़ा निकल गया है इस तरह से हरेक काम में बड़ी भारी गलती हो रही है तो फोग है जगह इतना सुंदर है दाह लग जाती दाह ज्वर उस दाह फोग के लाशों देर लगे तो बड़ी शांति मिलती है ठंड मिलती है जलन मिट जाती है मेरे को बुखार आया है मैंने ये किया भी हो देखा है वो फोग बहुत कहीं घना हुए बहुत पन पे आप से आप ही हुए लकड़ी काम आवे सब काम आवे उनको खत्म कर रहे हैं जमीन अच्छी रहती है जमीन उगती नहीं सब फायदे की बात है मुठ है सेवन है धामन है ऐसे गाय है मरवण है ऐसे कई चीजें हैं जिनसे जमीन अच्छी रहती है घास भी अच्छा होता है सेवन के घास से गायों का दूध मीठा होता है गायों के घी में पीपरमेंट जैसी सुगंधी आती है वो घी खाया हो तो डका रहती है पीपरमेंट जो सुंदर और ये तक गाय का घी दूध शुद्ध होता है जब वे गाय सेवन खाती है तो सेवन और पाला अपनी ये जमीन है इस जमीन की रक्षा अगर ठीक करी जाए तो इसमें घास उत्पन्न होने की भी इसमें शक्ति ज्यादा है मैंने देखा है और पाला भी बहुत होता है झाड़ होता है और झाड़ों को देखा है जो उसमें पाला बहुत लगता है हर एक जमीन में इतना पाला नहीं लगता जितना इस जमीन में लगता है इसकी रक्षा करो गांव वाले मना लेकर के काम लेते हैं बंशीलाल जी राठी ने जमीन छुड़ाई थी यहाँ ये बगीचे बनाई थी साधों के लिए जंगल में बहुत दूर अब यहाँ तक तो गाँव आ गया है और जमीन छुड़ाई थी बहुत गोचर भूमि यहाँ बारियां होती थी माड़ी लोग बारी करते थे सुबह जल्दी उठते थे हमारे अमृत राम जी 4 बजे कीर्तन करते जिसे उठ जाए 4 बज गया है तो वो लेकर बीकानेर बिना सजा करके अपना साग पत्ती बेचते थे तो उनसे सबसे छुड़ा करके गोचर भूमि छुड़ाई छुड़ाई तो महाराज बाड़ू पड़ी है न तो घास छोड़ते न तो लकड़ी छोड़ते लोग काट काट ले जाते हैं उसके लिए विचार किया भी यहाँ बन जाते अच्छी बात है तो आप लोग कहो उसके लिए हमने विचार किया कृषि एक शेठ ने कहा मैं पैसा लगाऊंगा तो वो लगा भाई इनके तार बंदी कर दो उस तार बंदी में आजकल क्या ढंग हुआ पता नहीं काम दिशा पड़ा है ना कर दे गांव के आदमी विरोध करते हैं कि तार बंदी नहीं होनी चाहिए कहाँ जाओ बताओ अरे आपके घर का पैसा लगा नहीं पैसा दूसरे गांव का आदमी लगाता है तार बंदी हो जाए जिसमें कितना फायदा होता है थोड़ी सी तार बंदी है जिसमें भी घास होता है ग्वार बोया ग्वारे गायों के लिए ग्वार हो जाता है गायों के लिए विदेशी ला करके घास लगाते हैं जो काट लो फेटी हो जाए उससे बढ़िया घास सेवन का होता है बहुत मीठा और बहुत बढ़िया बेबूठा भी इस तरह से होता है तो सेवन बहुत लग सकता है यहाँ पर हमारे धोरे पर भी सेवन लगाई है वहां भी पूछा आप देखो कोई कोई है परंतु आप लोग सहायता करो किसी तरह से तारबंदी हो जाए तो बहुत लाभ होगा तारबंदी होने पर भीतर में घास भी लगेगा और लगा तो गाय काम की चीज होगी लकड़ियां भी होगी गंवार भी होगा तरह तरह की चीज घास बन घास लगेगा तो इस तरह से सबकी शुद्धि हो जाए निर्मलता हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ज्ञान हो जाए निर्मल हो जाए सब ठीक हो जाए नारायण 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 किसी भाई ने ये दी है सूझ बड़ी अच्छी है हमारे पुर्जा भेजने वाले भाई लोग डरते बहुत है तो नाम लिखते नहीं एक सेवक इसमें लाया नाम किसी का राम लिखा है डरते हैं कि मेरे ऊपर ओला देखते हैं क्या लिख दिया तो डरते हैं लोग बोले डरो मरी निधर करो हमारे को सूझ बता दो हम बताओ हमारे क्या पता कहाँ कहाँ आपके अनर्थ हो रहा है सब बातों को मैं जानता नहीं तो भाई निधर को देखो मेरे को प्रश्न लो नहीं डरो मत नारायण 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 और आपस में प्रेम रखो, गृहस्थ में रहते हुए आपस में स्नेह रखो, एक एक को बड़ों को नमस्कार करो, आपस में एक एक की मदद करो, इससे सब ठीक हो। बैठो बना थोड़ी बैठ जाओ बात, क्योंकि ये परमात्मा एक तरफ संसार, बीच में है मनुष्य, तो दो बात, एक तो भगवान को याद रखना और एक दुनिया का हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना। अपाय आरक्षित है, गरीब है, उनकी सेवा करो, वो बड़ा भारी पुण्य होगा। हमारे माता बहनों में जची हुए के साधुओं ने भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन दो, बड़ा अच्छा होगा। अरे साधु ब्राह्मण से तेज है, जो भूखा मर्दों घर न दे उनका पुण्य कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होती है। हमारे तो हरेक महल देना चाहते हम रोटी खा नहीं सकते इतनी, यार वहाँ रोटी मिलती नहीं है, तो वहाँ देने से पुण्य होता है। मेरे को देने से मेरे तो एक आफत हो जाएगी कि मेरी रोटी लो, मेरी रोटी किसकी रोटी खावे, पेट तो छोटा सा है। इस वास्ते गरीबों की सेवा करो, वो ठीक होता है। ये व्यापारियों से आप पूछो, जो चीज सस्ती आती है उसमें नफा होता है, ज्यादा फायदा होती है, और जो चीज महंगी आती है उसका नफा ज्यादा नहीं होता। अब साधु ब्राह्मण दे देना चाहो तो हम लोग रहेंगे महंगे, तो महंगे पर खर्च हो, इसमें आपको नफा ज्यादा नहीं होगा। और गरीब है सस्ते, कोई देता नहीं, दुष्कार कर देता है, वहाँ आप रोटी खिलाओ, ये सस्ता माल है, सस्ते माल का नफा ज्यादा होगा, अधिक होगा। इस वास्ते उनको सेवा करो, उनकी गरीबों की आरक्षित है, उनकी सेवा करो, अन्न पहुंचाओ, वस्त्र पहुंचाओ उनके घरों में, जिससे विचारों का अभाव, अभाव का अभाव हो जाए, चीज मिल जाए कोई, ऐसे ठीक तरह से करो तो अपना जन्म सफल हो जाए। सत्संग की बातें सुनो, भगवान के चिंतन की बात सुनो, सेवा करो, घर में भी एक एक से काम धंधा करने का झपटी होगी, मैं करूँ वो कहते मैं करूँ, तो काम तो थोड़ा हो जाएगा, आदमी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसको लेने लगेगे वो चीज थोड़ी हो जाती है, और जिसको खोज लगे फिर नष्ट हो जाती है। इस वास्ते काम धंधा तो अपने करो, और चीज वस्तु दो तो चीज वस्तु ज्यादा हो जाएगी, काम धंधा कम हो जाएगा, क्यों हर एक कहते मैं करूँ वो मैं करूँ मैं करूँ, थोड़ा हो जाएगा तो आफत मिट जाएगी, और चीजें बढ़ जाएगी तो बहुत नफा हो जाएगा। आज काम न करने की बात बहुत कर रहे हैं लोग, सरकार की तरफ से इतना घंटा से ज्यादा काम मत करो, दुकान बंद करो, नहीं तो कर दे, ये दरिद्रता आखिर महान दरिद्रता आवेगी। पुरुषार्थ तो करो, मत खर्चा करो ज्यादा सभ्यता के लिए, एक कमरा बनाओ तो कितनी लकड़ियां चाहिए, कितना स्टूल, कितनी कुर्सियां, कितनी मेज, कितनी चाहिए बेंच, सर और कितनी पढ़ाई के बीच में कितनी कितनी खर्च करते हैं, तो अनुता खर्च करने से दरिद्रता आती है। हम लोग पढ़े, मेरी सीधी है थी वर्णमाला हमने पढ़ी है, जो एक पाठ का छोटा सा बजोटिया, वो पाटड़िया, उस पाटड़ी के ऊपर पानी डाल करके सफेद मिट्टी लोह दिया, और ऊपर ईंटा घस करके डाल दिया, और फोगड़े का भूसा ले लिया, लिख दिया। आज करे तो आज वो असभ्यता दी है। हमने पढ़ाई की है ऐसे, हमने वर्णमाला इसमें ही पढ़ी है, ज्यादा होती है तो तेल लगा दिया, राख लगा दी, उनसे ऊपर लिखा जाएगा पार्टी बन गई, पर उसे कपड़े खराब हो जाते हैं, और मैं कहता हूँ उसे कपड़े खराब नहीं होते, बढ़िया होता है। तो ये फोक की लकड़ी से कहते विद्या आती है, हमने सुना सब बचपन में, और हम पढ़ते थे, हमने पढ़ाई की है, तो वो अगर बालकों को कितनी बढ़िया चीज, परंतु आज करो पढ़ाई में खर्चीले जीवन कर रहे हैं, पैदा तो कम करो, काम कम करो और खर्चा ज्यादा करो, नतीजा दरिद्रता होती, वही दरिद्री हो गया आज ये देश, कितना कर्जदार हो गया। खर्चा ज्यादा नहीं खर्चता, पैदा ज्यादा खर्च जाएगी, पैदा अधिक हो खर्चे से तो खर्च जाएगा, परंतु पैदा से ज्यादा खर्चा होगा तो दरिद्रता ही होगा, और क्या दशा होगी। हर एक काम में साध स्वच्छता निर्मलता सादगी रखो तो उनसे हमारा काम ठीक होगा। सुखी नहीं करो स्वाद करो तो स्वाद में सुखी नहीं में धन बहुत खर्च होता है, समय खर्च होता है, और आदत बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ जाता है, वो बड़ा भारी दोष है। वो सदा साथ में चला, मरने पर भी स्वभाव साथ रहता है। इस वास्ते स्वभाव को शुद्ध निर्मल बनाओ, हित करने की चेष्टा हर एक जहाँ करो, दूसरे का हित करो, दूसरे की सेवा करो, सुख पहुंचाओ और भगवान को याद करो। ये दो बात खास है मनुष्य मात्र के लिए, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सबके लिए बड़े काम की चीज है। ऐसे सच्चे काम में लगो अच्छी तरह से। कितनी बढ़िया बात है, कितना मौका मिला है हमारे को भगवद गीता रामायण आदि पढ़ने का। अभी वाल्मीकि रामायण सुना है, आगे भागवत सुनने का मौका मिलता है, फिर नवाह का मौका मिलता है। नवाह में कल रहते हैं, जयपुर में मैंने देखा है सत्संग में आते हैं उनसे बहुत ज्यादा नवाह पाठ में आते हैं। तो अपने सगे संबंधी कुटुम्बी उनको कागज देना चाहिए, बुलाना चाहिए कि नवाह का पाठ हो रहा है। तो कलकत्ते आदि शहरों से लोग आ जाएंगे, कलकत्ते इतना उसमें रस आता है, आनंद आता है। तो नवाह पाठ होने वाला है, यहाँ का प्रबंध बहुत अच्छा किया। वाल्मीकि रामायण भी, ये तुलसीदास रामायण भी, और गीता जी का पाठ गीता की, और अगाड़ी भागवत का पारायण, अगाड़ी फिर नवाह पाठ, ऐसा ऐसा होगा इसमें से। हाँ जी, हाँ लीला का भी, राष्ट्र लीला भी बुलाई है, तो ठाकुर जी लीला देखने को मिलेगी। तो सब चलेगा, यहाँ जो श्रावण जाया करते हैं वृंदावन में, तो श्रावण में वृंदावन जाते हैं, हमारे भादव में वृंदावन की मंडली आती है जो भगवान की लीला देखने के लिए। तो उसमें लोगों को जरा जरा समाचार पत्र देना चाहिए कि जिसने भाई हमारे ऐसा ऐसा काम हो रहा है। भागवत महात्म है परम पुराण का, उसमें लिखा है कि जैसे विवाह शादी में बुलावे, ऐसे सगे संबंधी कुटुम्बियों को बुलाना चाहिए कथा में, कि यहाँ हमारे भागवती कथा हो रही, आओ। तो हमारे नवाह हो रहा है, रासलीला हो रही है, भागवती कथा ये भी हो रही है, उसमें दूर दूर से आवे, लोग वंचित न रह जाए, अच्छी तरह से आओ। यहाँ रहने का भोजन का प्रबंध करे हैं, त्रुटि रह जाए तो माफ कर देना, परंतु यहाँ के सज्जनों के उत्साह है, आपका प्रबंध करते हैं, रहने का प्रबंध करते हैं, भोजन का भी प्रबंध कर देते हैं, सबको राजी कर लेना हाथ की बात नहीं, पर नियत अच्छी है कि भी सब सुख पावे, आराम से रहे, भोजन मिले, सुगमता से इनको मिल जाए, खर्चा कम लगे, आने वाले सत्संग करे, ऐसी नीयत से काम कर रहे हैं। हमें तो बड़ा अच्छा लगा इस तरह से। और त्रुटियां हुए तो वो आप सूचना दो, कार्यकर्ताओं को दो, मेरे को दे दो, जिससे कार्यकर्ताओं कहा जाए जो त्रुटि दूर करे। देखो कि तुम्हारे गलती रही, इतनी गलती रही, भोजन में ये गलती, रहना में ये गलती, तो गलती रहती है। जो एक मार्मिक बात बताऊं, जहां गलती निकालते हैं कमी रहती है, इससे सिद्ध होता है कि वे सेवा करते हैं। सेवा करते उन्हीं में तो गलती रहेगी, सेवा करेंगे नहीं क्या गलती रहेगी। तुम्हारे भोजन में ये गलती है, तुम्हारे रखने में ये गलती है, बैठाने में ये गलती है, पंडाल में ये गलती है। जिससे सिद्ध हुआ कि आप काम करते हो, गलती आती है उसे तो राजी होना चाहिए, सुधार करना चाहिए, क्योंकि हम काम करते हैं, काम करेगी नहीं तो गलती होगी होगी नहीं। तो ये काम करते हैं, ये पहचान है इसकी, इस वास्ते कोई घबराना नहीं। कार्यकर्ता और कर्ताओं को तो चाहिए जितनी गलतियां आपकी बता उतना आपका सुधार होगा। नारायण नारायण। अब भाई थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ा सा कम है अभी, अभी नौ में कमती है, तो उतना देर तो हमारा समय है, हमारे को दिया हुआ। अब भाई फिर थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन करो भाई, थोड़ा नौ से ऊपर ही हो जाए, परवाह नहीं।